एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्ते।
आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम में से कई लोगों के जीवन का हिस्सा है, लेकिन शायद हम उसे उतनी गहराई से नहीं समझते जितना सोचते हैं।
हाँ बिल्कुल, हिंदू धर्म।
और इस पर थोड़ी गहराई से सोचने के लिए हमारे पास किम नॉट की किताब है।
हिंदुइज्म, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। छोटी सी किताब है लेकिन विचार बड़े हैं।
और हम इसी विषय पर एक और विश्लेषण के कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे।
हाँ, और किम नॉट वो ब्रिटेन की जानी मानी स्कॉलर है, धर्म को समाज के नजरिए से देखती है।
बिल्कुल। तो ये विषय आज क्यों इतना जरूरी है, आपको क्या लगता है?
देखिए, दुनिया तो छोटी होती जा रही है, कल्चर आपस में मिल रहे हैं, और हिंदू धर्म ये तो दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे, क्या कहते हैं, विविध परंपराओं में से एक है। तो इसे समझना सिर्फ भारत को समझना नहीं है, ये तो ग्लोबल समाज को समझने जैसा है। पर दिक्कत ये है कि इसे लेकर बड़ी सीधी साधी, मतलब स्टीरियोटाइप वाली धारणाएं हैं।
सही बात है। और यहीं पर किम नॉट का नजरिया काम आता है, वो हमें एक तरह से चैलेंज करती हैं।
हाँ, वो तो हिंदू धर्म शब्द पर ही सवाल उठा देती हैं।
बिल्कुल, कि क्या ये वाकई एक धर्म है, वैसा ही जैसा हम इस्लाम या ईसाइयत को समझते हैं, या ये कुछ और ही चीज है? तो आज हम कोशिश करेंगे नॉट के इसी नजरिए को समझने की, कि भाई इस विशाल बहुरंगी परंपरा को देखा कैसे जाए बिना किसी छोटे से डब्बे में फिट किए।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले ये किम नॉट हैं कौन, थोड़ा और बताइए इनके बारे में।
हाँ, तो जैसा आपने कहा, ब्रिटिश स्कॉलर हैं, लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही हैं, धर्म और सेक्युलर स्टडीज पढ़ाती थीं।
अच्छा।
और उनकी खास बात यह है कि वो धर्म को सिर्फ किताबी ज्ञान या थियोलॉजी से नहीं समझती, वो देखती हैं कि लोग असल में धर्म को जीते कैसे हैं।
लिव्ड रिलीजन जिसे कहते हैं,
बिल्कुल, जीता हुआ धर्म।
लोग क्या महसूस करते हैं, क्या करते हैं रोजमर्रा में।
उनका काम ज्यादातर दक्षिण एशियाई, खासकर हिंदू प्रवासी समुदायों पर रहा है।
जैसे ब्रिटेन या अमेरिका में बसे लोग।
हाँ, तो इससे उन्हें मतलब एक डबल पर्सपेक्टिव मिला है, अंदर का भी बाहर का भी। वो किसी पंडित या गुरु की तरह ये नहीं बताती कि असली हिंदू धर्म क्या है, वो तो एक समाजशास्त्री की तरह देखती हैं कि ये परंपराएं समाज में कैसे काम कर रही हैं, कैसे बदल रही हैं।
और उनका अप्रोच भी कुछ अलग है सुना है, मेथडोलॉजिकल एम्पथी जैसा कुछ।
हाँ बिल्कुल, मतलब विषय को सहानुभूति से समझो, पर अपनी राय या जजमेंट मत थोपो, एक विश्लेषणात्मक दूरी बनाए रखो लेकिन सम्मान के साथ।
ये तो काफी संतुलित नजरिया लगता है।
हाँ, और इसी वजह से वो इस जटिल विषय पर लिखने के लिए काफी उपयुक्त हैं। वो सिर्फ पुराने टेक्स्ट में नहीं उलझती, आज की रियलिटी देखती हैं।
तो अब आते हैं किताब पर, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नाम तो छोटा है पर काम बड़ा लगता है।
हाँ, है तो छोटी पर सोचने पर मजबूर करती है। इसका मुख्य आइडिया क्या है, सार क्या है?
सबसे पहली और शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात नॉट ये कहती हैं कि भाई ये जो हिंदू धर्म है ना, जिसे हम आज एक ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड रिलीजन मानते हैं,
हाँ,
वो काफी हद तक एक पश्चिमी सोच की देन है, खासकर औपनिवेशिक काल की।
अच्छा,
मतलब कैसे?
मतलब ये कि हिंदू शब्द जो है वो शुरू में कोई धार्मिक लेबल नहीं था,
वो तो एक ज्योग्राफिकल पहचान थी।
सिंधु नदी के पार वाले लोग।
हाँ बिल्कुल। फिर जब अंग्रेज आए तो उन्हें यहाँ इतनी सारी अलग अलग पूजा पद्धतियां, विश्वास, पंथ, गुरु देखे कि वो कंफ्यूज हो गए।
समझने में दिक्कत हुई होगी।
जाहिर है, तो उन्होंने प्रशासन की आसानी के लिए इन सबको एक छतरी के नीचे रख दिया, हिंदुइज्म, ताकि वो इसे इस्लाम या ईसाई धर्म जैसा एक सिंगल ऑर्गेनाइज्ड धर्म समझ सकें। तो नॉट कह रही हैं कि ये जो एकता हमें दिखती है वो थोड़ी ऊपर से थोपी हुई है।
हाँ, उनका तर्क यही है कि ये थोपी हुई एकता असलियत को, मतलब उस अंदरूनी विविधता को छुपा देती है। भारत में धर्म हमेशा से ज्यादा तरल रहा है, ज्यादा फैला हुआ।
कोई एक फाउंडर नहीं,
कोई एक किताब नहीं जिसे सब माने।
कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं।
बिल्कुल, नॉट कहती हैं कि ये परंपराओं का एक परिवार है, फैमिली ऑफ ट्रेडिशंस, जिसमें हजारों साल से चीजें जुड़ती रही हैं, बदलती रही हैं, विकसित होती रही हैं।
तो किताब हमें इसी कॉम्प्लेक्सिटी को स्वीकार करने को कहती है।
हाँ, न कि उसे सिंपल बनाने की कोशिश करने को। किताब बस इस परिवार के कुछ मेंबर्स से मिलवाती है,
जैसे कि
जैसे वेद और उपनिषद के विचार, फिर रामायण महाभारत की कहानियां, पुराणों की दुनिया, देवी देवता, कर्म पुनर्जन्म, संस्कार, जाति व्यवस्था, और हाँ, आधुनिक बदलाव भी।
सुधार आंदोलन, हिंदुत्व वगैरह।
हाँ, वो सब। लेकिन ये सिर्फ लिस्ट नहीं है, ये दिखाती है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं और कैसे ये सब लगातार चल रहा है, बदल रहा है।
चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं, चैप्टर वाइज ना जाकर कुछ बड़े मुद्दों पर बात करते हैं जो नोट उठाती हैं। पहला तो यही लेबल वाला मुद्दा।
हाँ, वो बताती हैं कि 19वीं सदी में जब अंग्रेजी राज था और ईसाई मिशनरी आलोचना कर रहे थे, तो उसके जवाब में कुछ भारतीय सुधारकों ने भी हिंदू धर्म को एक बहुत प्राचीन, शाश्वत और एकदम एक, मतलब सनातन धर्म के रूप में पेश करने की कोशिश की।
अच्छा, एक तरह का डिफेंसिव रिएक्शन।
हाँ, कह सकते हैं। लेकिन नॉट कहती हैं कि ये भी असल में एक तरह का सिंप्लीफिकेशन ही था, वो जो असल विविधता थी उस पर पर्दा डालने जैसा।
ये तो दिलचस्प है, मतलब हिंदू धर्म की कहानी खुद में काफी पेचीदा है।
बिल्कुल।
लेकिन अगर ये बाहरी लेबल है तो फिर अंदर से क्या जोड़ता है इन सब परंपराओं को, कोई कॉमन धागा तो होगा?
हाँ, नॉट कहती हैं कि एकता किसी एक सिद्धांत या किताब में ढूंढना मुश्किल है, एकता है कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स में और एक तरह के पारिवारिक एहसास में।
जैसे?
जैसे कर्म का सिद्धांत, संसार यानी जन्म मृत्यु का चक्र, धर्म, और धर्म को सिर्फ ड्यूटी नहीं समझना चाहिए।
हाँ, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है।
बिल्कुल, ये तो वो व्यवस्था है जो यूनिवर्स को, समाज को, व्यक्ति को, सबको धारण करती है, सबको संभाले रखती है, और फिर मोक्ष यानी साइकिल से मुक्ति।
तो ये विचार अलग अलग रूपों में सब जगह मिलते हैं।
हाँ, कमोबेश सभी परंपराओं में ये कॉन्सेप्ट्स किसी न किसी रूप में मौजूद हैं।
और यहीं पर वो लिव्ड रिलीजन वाली बात आती है ना?
बिल्कुल। नॉट इस पर बहुत जोर देती हैं कि ज्यादातर हिंदुओं के लिए धर्म का मतलब कोई मुश्किल फिलॉसफी समझना नहीं है,
वो तो जिया जाता है।
हाँ, रोज की पूजा में, मंदिर जाने में, त्योहार मनाने में, घर के संस्कारों में,
जैसे दिवाली की सफाई और सजावट, होली के रंग,
किसी तीर्थ पर जाके मन्नत मांगना, शादी के रीति रिवाज, ये सब धर्म का ही हिस्सा है।
नॉट ऑन तो ये भी कहती हैं कि दर्शन का जो अनुभव है,
देवता की मूर्ति को देखना,
हाँ, और ये महसूस करना कि देवता भी आपको देख रहे हैं, ये अनुभव अक्सर किसी ग्रंथ को पढ़ने से ज्यादा गहरा और डायरेक्ट होता है आम लोगों के लिए।
ये बात तो सही लगती है, रोजमर्रा की जिंदगी में यही दिखता है।
हाँ, ग्रंथों में भले ही निराकार ब्रह्म की बातें हों, पर आम आदमी के लिए तो गणेश जी या हनुमान जी या अपनी कुल देवी ज्यादा असली हैं।
और नॉट ऑन इसी विविधता को हाईलाइट करती हैं। एक तरफ ऊंचे दार्शनिक विचार, दूसरी तरफ हजारों लोकल देवी देवता, लोक कथाएं, मान्यताएं, और ये सब साथ साथ चलते हैं
बिना किसी टकराव के ज्यादातर।
इसे सिर्फ पॉलीथियज्म या बहुदेववाद कहकर खारिज करना, वो कहती हैं, बहुत आसान है, लेकिन ये असल में ईश्वर को देखने के, अनुभव करने के कई तरीकों का एक संगम है।
अच्छा, अब ग्रंथों की बात करें तो वेद सबसे पुराने हैं ना?
हाँ, वेद श्रुति माने जाते हैं, जो सुना गया, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन नॉट ये भी बताती हैं कि वेद मूल रूप से यज्ञ और कर्म कांड के ग्रंथ थे, उनकी ध्वनि, उनका उच्चारण बहुत मायने रखता था।
फिलॉसफी बाद में आई, उपनिषदों में।
हाँ, उपनिषदों ने दार्शनिक गहराई दी, आत्मन, ब्रह्म, मुक्ति के विचार। लेकिन आम लोगों की जिंदगी में शायद स्मृति साहित्य ज्यादा प्रभावशाली रहा है।
स्मृति यानी जो याद किया गया।
बिल्कुल, जैसे रामायण, महाभारत, और उसी का हिस्सा भगवद गीता और पुराण,
जिनमें कहानियां हैं विष्णु, शिव, देवी की।
हाँ, ये कहानियां नैतिकता सिखाती हैं, भक्ति का रास्ता दिखाती हैं, जीवन के आदर्श बताती हैं। तो मतलब कोई एक सिंगल होली बुक नहीं है, ये तो ज्ञान का एक बहुत बड़ा मल्टी लेयर्ड भंडार है।
और समाज का क्या? आपने कहा धर्म और समाज जुड़े हुए हैं।
हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जाति व्यवस्था।
ये तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है।
है, और नॉट इसे सावधानी से डील करती हैं। वो वर्ण यानी चार थ्योरेटिकल क्लास और जाति यानी हजारों जन्म आधारित एंडोगैमस ग्रुप्स के बीच का फर्क बताती हैं।
वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
हाँ, वो थ्योरी है। जाति असलियत है जो पारंपरिक व्यवसायों से भी जुड़ी थी,
और इसमें ऊंच नीच की भावना भी थी, पवित्रता अपवित्रता।
हाँ, वो धारणाएं इसका आधार थी, और इसी ने भेदभाव को जन्म दिया, खासकर उन ग्रुप्स के लिए जो वर्ण व्यवस्था से भी बाहर माने जाते थे, जैसे दलित।
नॉट इस पर भी बात करती हैं।
हाँ, वो इसके क्लासिकल जस्टिफिकेशन के साथ साथ आधुनिक भारत में इसकी जो आलोचना हुई है और जो सुधार के प्रयास हुए हैं, उनका भी जिक्र करती हैं। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।
सही बात है। और फिर आता है मॉडर्न जमाना।
हाँ, उपनिवेशवाद का असर, उसने चुनौती भी दी और बदलाव भी लाया।
जैसे
19वीं सदी में सुधार आंदोलन हुए, राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो समाज, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज।
इन्होंने क्या किया?
इन्होंने मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव जैसी चीजों का विरोध किया। हिंदू धर्म को ज्यादा कह सकते हैं तर्क संगत बनाने की कोशिश की।
अच्छा,
लेकिन इसी दौर में एक और विचारधारा भी उभरी, हिंदुत्व,
जिसे वीडी सावरकर ने कॉइन किया था।
हाँ, नोट साफ करती हैं कि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, ये धार्मिक परंपरा से अलग है।
किस तरह?
ये भारतीय पहचान को मुख्य रूप से हिंदू सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जोड़ती है। ये गांधी या नेहरू का जो आइडिया था एक सेक्युलर प्लूरलिस्टिक भारत का, उससे अलग है।
ये अंतर समझना आज की राजनीति के लिए जरूरी है।
बिल्कुल।
और आखिर में नॉट बात करती हैं ग्लोबल हिंदू धर्म की।
हाँ, कि अब ये सिर्फ भारत की चीज नहीं रही, दुनिया भर में फैलाए, प्रवासी समुदाय हैं।
तो वो अपनी परंपराओं को कैसे निभा रहे हैं नई जगहों पर?
वो अडेप्ट कर रहे हैं। लंदन हो या ह्यूस्टन, वहाँ जो मंदिर बने वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, वो नए सोशल और कल्चरल सेंटर बन गए,
जहाँ परंपराओं को फिर से समझा जा रहा है, गढ़ा जा रहा है।
हाँ, युवा पीढ़ी के लिए पहचान के नए मायने बन रहे हैं। ये दिखाता है कि ये परंपराएं कितनी डायनामिक हैं, कितनी जिंदा हैं।
तो इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, क्या टेक अवेज हैं?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात तो यही है कि हिंदू धर्म शब्द को जरा सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए,
क्योंकि ये एक बाहरी लेबल हो सकता है।
हाँ, जो अंदर की जबरदस्त विविधता को छुपा सकता है। नॉट का कहना है कि ये परंपराओं का एक परिवार है, इसकी एकता किसी एक नियम या किताब में नहीं है,
बल्कि कुछ कॉमन आइडियाज,
हाँ,
कर्म, धर्म, मोक्ष और एक तरह के आपसी जुड़ाव में है।
बिल्कुल। दूसरी बात ये कि धर्म सिर्फ सिद्धांतों में नहीं है, वो जीने में है।
लिव्ड रिलीजन,
पूजा, त्योहार, संस्कार, तीर्थ यात्रा। हाँ, इससे समझे बिना आप इस परंपरा को नहीं समझ सकते। जैसे हमारे घरों में ही देख लीजिए, बड़े बुजुर्ग शायद वेद उपनिषद ना जानते हों, पर रोज की पूजा, साल भर के व्रत त्योहार वो पूरी श्रद्धा से करते हैं, वही उनका जीता जागता धर्म है।
सही कहा। तीसरा पॉइंट क्या होगा?
तीसरा कि ये परंपराएं रुकी हुई नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं, ये लगातार बदलती रही हैं, ढलती रही हैं,
वैदिक काल से आज तक।
हाँ, बाहरी असर को सोखा भी है और अपनी पहचान भी रखी है, ये इसकी एक ताकत है।
चौथी बात,
शायद सामाजिक और धार्मिक का जुड़ाव है।
हाँ, खासकर जाति व्यवस्था के जरिए, वो आज भी किसी न किसी रूप में समाज पर असर डालती है, भले ही कानूनी तौर पर वो खत्म हो चुकी है।
और पांचवा?
पांचवा ये कि अब ये एक ग्लोबल फिनोमेनन है, भारत के बाहर बसे हिंदू समुदाय भी इसकी पहचान को शक्ल दे रहे हैं।
अच्छा, किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो एकदम याद रह जाती हैं, कोट्स जैसे। हाँ बिल्कुल, जैसे नॉट कहती हैं कि हिंदू धर्म की एक परिभाषा खोजना एक भ्रामक खोज है, यह परंपराओं का एक परिवार है, न कि निश्चित सिद्धांतों वाला एक धर्म।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम चीजों को कैसे कैटेगरी में डालते हैं।
हाँ, या फिर वो दर्शन वाली बात, कई हिंदुओं के लिए देवता की छवि के साथ आदान प्रदान होने वाली पारस्परिक दृष्टि, दर्शन का कार्य अमूर्त दार्शनिक ग्रंथों के अध्ययन की तुलना में ईश्वर का अधिक गहरा और तत्काल अनुभव है।
ये अनुभव की अहमियत बताता है, सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं।
और धर्म की परिभाषा पर भी, धर्म वह मूलभूत सिद्धांत है जो सितारों की गति से लेकर घर के संचालन तक पूरी वास्तविकता को संरचना देता है।
मतलब ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि एक पूरा वर्ल्ड व्यू है।
हाँ, और आखिर में प्रवासी समुदायों पर ये बात, लंदन या ह्यूस्टन में हिंदू मंदिर केवल भारत की प्रतिकृति नहीं है, यह एक नया सामाजिक और सांस्कृतिक स्थान है जहाँ परंपराओं पर फिर से बातचीत होती है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक ग्लोबल हिंदू पहचान गढ़ी जाती है।
ये दिखाता है कि परंपरा स्थिर नहीं है, वो विकसित होती रहती है।
बिल्कुल।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, क्या एप्लीकेशन है?
देखिए, अगर कोई हिंदू नहीं है तो ये किताब या ये विचार उन्हें दुनिया की एक बड़ी आबादी और उनकी सोच को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं,
स्टीरियोटाइप्स तोड़ने में, जैसे ये सोचना कि सारे हिंदू एक जैसे हैं।
हाँ, और इससे आप अपने हिंदू दोस्तों, पड़ोसियों या साथ काम करने वालों के साथ ज्यादा सम्मान से, ज्यादा समझदारी से पेश आ सकते हैं।
और नॉट का जो तरीका है किसी भी लेबल पर सवाल उठाना, वो हमें क्रिटिकल थिंकिंग भी सिखाता है ना।
बिल्कुल, कि किसी भी बड़ी कैटेगरी, चाहे वो कैपिटलिज्म हो, डेमोक्रेसी हो या कुछ और, उसे बस ऊपर से ना देखें, उसके अंदर की विविधता, उसकी हिस्ट्री, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश करें।
आज के भारत को समझने में भी ये मदद करता है।
हाँ, खासकर हिंदुत्व के उदय को समझने में। ये क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं, ये जानना जरूरी है। धार्मिक परंपरा और राजनीतिक विचारधारा का फर्क समझना अहम है।
और पर्सनल लेवल पे
मुझे लगता है स्वधर्म का आइडिया सोचने पर मजबूर करता है। अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं? नैतिकता सिर्फ नियमों में नहीं, अपने कर्मों में है, अपने रिश्तों में है।
और जो लोग भारत से बाहर हैं, खासकर युवा पीढ़ी,
उनके लिए अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को समझने का ये एक अच्छा फ्रेमवर्क हो सकता है। अपनी मल्टी लेयर्ड आइडेंटिटी को स्वीकारना, उसे दूसरों को समझाना शायद आसान हो जाए।
तो आखिर में इस सबसे क्या लेकर जाएं? आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यही है कि हिंदू धर्म को किसी बंद डिब्बे में नहीं रखा जा सकता। ये एक बहती नदी है जिसमें कई धाराएं हैं और जो लगातार बदल रही है। किम नॉर्थ हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, इसकी विविधता को सराहने की नज़र देती हैं, उसे एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि इसकी खासियत मानने की।
और मेरे लिए सबसे अहम सीख ये है कि किसी धर्म या संस्कृति को समझने के लिए सिर्फ उसकी बड़ी किताबें या महान विचार जानना काफी नहीं है। हमें ये देखना होगा कि आम लोग उसे जीते कैसे हैं, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उसका क्या मतलब है, उनके क्या स्ट्रगल्स हैं, वो कैसे बदलावों से गुजरते हैं। नॉट का काम हमें वो जमीनी हकीकत दिखाता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी को स्वीकार करने और उसे समझने की कोशिश करने का नजरिया है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।